लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन कल्याण तथा मानव केंद्रित समाज के निर्माण में योगदान प्रदान करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओ, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ भजन ऐसे भी हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। प्रभु, तू शक्तिशाली और प्रतापी है। शत्रुओं से लूटा हुआ माल पहाड़ जैसा ऊंचा है। शूरवीर चिर निद्रा में सो गए, उन सब योद्धाओं का बाहुबल नष्ट हो गया। याकूब के ईश्वर, तेरी धमकी सुनकर रथ और युद्ध अश्व निष्प्राण हो गए। तू आतंकित करता है, जब तेरा क्रोध भड़क उठता है तो तेरे सामने कौन टिक सकता है। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 76वें भजन के 4 से लेकर 9 तक के पदों के शब्द, जिनकी व्याख्या विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने की थी। इन शब्दों से भजनकार ने यह संदेश देना चाहा है कि मनुष्य भले ही लूट के माल से अपना घर भर ले, वह पहाड़ जैसा उसे विशाल बना ले, प्रभु ईश्वर के प्रताप के आगे वह कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ में निहित नबी मूसा के युग में हुआ। आपका ध्यान हमने इस ओर आकर्षित किया था कि भजनकार उसके अपने दिनों से लगभग 500 साल पहले घटी निर्गमन ग्रंथ की घटना का स्मरण कर रहा था, जिसमें प्रभु ईश्वर ने मिस्र के फराउन और उसके योद्धाओं से इजरायली लोगों की रक्षा की थी। अब उसी प्रकार ईश्वर यूदा की रक्षा कर रहे थे। ईश्वर के प्रताप और उनके तेज के आगे अस्सुरी राजा के सारे शूरवीर निश्चेत और निष्प्राण जमीन पर गिर गए थे। प्रभु के कोप को वे सहन नहीं कर पाए तथा धराशायी हो गए, इसलिए कि बुराई की शक्तियां प्रभु ईश्वर के प्रताप के आगे टिक नहीं पाती हैं। उन प्रभु के आगे जिन्होंने चंद्रमा और सूर्य को स्थापित किया तथा पृथ्वी के सीमांतों को निर्धारित किया। स्तोत्र ग्रंथ के 76वें भजन का रचयिता वस्तुतः यह संदेश देना चाहता था कि प्रभु ईश्वर अपने लोगों की सदैव सुधि लेते हैं। वे दीनहीन लोगों की प्रार्थना को कभी नहीं ठुकराते तथा आतताइयों के दमन चक्र से उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए मनुष्य प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखे, शुद्ध हृदय से उन्हें धन्य मनाए, उनका स्तुतिगान करे तथा सब कुछ के लिए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया करे। ईश्वर प्रतापी विजेता हैं, उनमें अपने विश्वास को सुदृढ़ करते हुए वह ईश आदेशों के अनुकूल जीवन यापन करें। आगे 76वें भजन के 9वें और 10वें पदों में भी भजनकार कहता है, ईश्वर जब तू न्याय करने और दीन दुखियों का उद्धार करने उठा, जब तूने स्वर्ग में अपना निर्णय सुनाया तो पृथ्वी भयभीत होकर शांत हो गई। श्रोताओं, ईश्वर का न्याय तब तब प्रकट हुआ जब जब ईश प्रजा ने उन्हें पुकारा। फराउन के अत्याचारों से त्रस्त जब इजरायली प्रजा ने ईश्वर को पुकारा तब ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। अस्सूरी राजा सेनहेरीब ने जब लोगों को प्रताड़ित किया तब ईश्वर यूदा में प्रकट हुए। इसी कारण बाइबल पंडित मानते हैं कि बुराई इसीलिए उभरी कि प्रभु ईश्वर की महिमा पृथ्वी के सीमांतों तक छा जाए। ईश्वर जब तू न्याय करने और दीन दुखियों का उद्धार करने उठा, जब तूने स्वर्ग में अपना निर्णय सुनाया तो पृथ्वी भयभीत होकर शांत हो गई। इन शब्दों में भजनकार बाइबल प्रकाशना के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए एक धर्म तत्व वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करता है तथा ईश्वर के कार्यों का स्मरण दिलाता है। वह ईश्वर के उद्धारकारी कार्यों का बखान करता तथा उन बातों की याद दिलाता है जब ईश्वर के सामर्थ्य से बुराई को परास्त करने के लिए जल प्रलय हुआ था और पृथ्वी भयभीत हो उठी थी। जल प्रलय से जो लोग बच निकले उनसे मानो भजनकार कहता है कि वे ईश्वर को अपनी कमर में कमरबंद की तरह बांधे रखें, क्योंकि वे ही उनके उद्धार करता हैं। इसका एक अन्य उदाहरण उत्पत्ति ग्रंथ के जोसेफ तथा उसके भाइयों की कहानी में हम पाते हैं। भाइयों ने जोसेफ को दास बनाकर बेच डाला था। अपने इस भयंकर अनुभव के बाद सुरक्षित वापस लौटने पर जोसेफ ईश्वर का गुणगान करता है और उसके समक्ष एकत्र भाइयों से कहता है, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाही किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणित कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए। अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 76वें भजन के अंतिम 4 पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं, विद्रोही एदोम तेरी स्तुति करेगा, हमात के बचे हुए लोग तेरे पर्व मनाएंगे, मन्नते मानो उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के लिए पूरा करो, निकटवर्ती राष्ट्र तेजस्वी प्रभु को भेंट चढ़ाने आए, क्योंकि वह शासकों का घमंड तोड़ता और पृथ्वी के राजाओं को आतंकित करता है। श्रोताओ, एदोम और हमात ने विद्रोह करने के बावजूद प्रभु ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होते देखा था, इसीलिए भजनकार कहता है, विद्रोही एदोम तेरी स्तुति करेगा, हमात के बचे हुए लोग तेरे पर्व मनाएंगे। और फिर हमसे कहता है, मन्नते मानो उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के लिए पूरा करो, क्योंकि प्रभु ने हम सब के लिए महान कार्य किए हैं। श्रोताओ, स्तोत्र ग्रंथ के 76वें भजन का रचयिता वास्तव में हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन हमारी अपनी बपौती अथवा हमारी अपनी संपत्ति नहीं है। जीवन ईश्वर द्वारा मिला वरदान है जिसे हम उन्हीं के आदेश अनुकूल व्यतीत करें, उसका किसी प्रकार से दुरुपयोग न करें, क्योंकि मानव जीवन ही वह स्थल है जहां ईश्वर के प्रेममय कार्य संपादित हुआ करते हैं। यही वह स्थल है जहां उनके उद्धारकारी कार्यों की प्रकाशना होती है। 76वें भजन के अंतिम पद में भजनकार निर्देश देते हुए कहता है, निकटवर्ती राष्ट्र तेजस्वी प्रभु को भेंट चढ़ाने आए, क्योंकि वह शासकों का घमंड तोड़ता और पृथ्वी के राजाओं को आतंकित करता है। श्रोताओं, प्रायः राजा, शासक, तानाशाह और राष्ट्राध्यक्ष यही मान लेते हैं कि उन्हीं पर सब कुछ निर्भर करता है, वे ही अपने राष्ट्रों और देशों के कर्ता धरता हैं। किंतु 76वें भजन का रचयिता स्मरण दिलाता है कि यदि शासक और राजा केवल लौह दंड से लोगों का दमन करते हैं तो कभी भी ईश्वर के कोप और न्याय से वे बच नहीं सकते। ईश्वर दीन दुखियों की सुधि लेते हैं, कहता है, ईश्वर शासकों का घमंड तोड़ता और पृथ्वी के राजाओं को आतंकित करता है।
कथा कहे निशि से निशि